वो शोक में हो। हमको जो दुख हुआ है हुआ है, हमारा कोई कर्म रहा होगा पूर्व जन्म में, मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जैसे वे दुखी हों और रोवें। यह एक बहुत बड़ा गुण है द्रौपदी के वचनों का, इसको साम्य कहते हैं, दूसरे के दुख को अपने दुख के समान समझना। तो द्रौपदी समझ रही है कि पुत्र के विरह में कितना दुख होता है। आज मैं रो रही हूँ अश्रुमुखी होकर, मेरे मुख में आंसू फैले हुए हैं, आँखों से झरझर आंसू झर रहा है। मैं माँ हूँ तो मुझे पता है कि पुत्र का मरण हो जाने पर माँ को कितना कष्ट होता है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे गुरु की माँ, मेरे गुरु की पत्नी इस तरह से रोवे और वो दुखी हो, मैं नहीं चाहती। कितनी महानता है, इसको शुद्ध गोस्वामी ने समम कहा है, दूसरे के दुख को अपने दुख के समान समझना। और अंत में उपदेश करती है, यह कोपितम ब्रह्म कुलम राजन ने रजितात्म भी तत्कुलम प्रदहत्य सुसानुबंधम सुचारपितम। राजाओं का जो परिवार या क्षत्रियों का वह परिवार जो ब्राह्मणों को दुख में डालता है, सताता है कई तरह से, तो ब्राह्मणों को सताने वाला क्षत्रियों का कुल अपने पूरा वंश सहित नष्ट हो जाता है। यह निष्ठुर उक्ति है, कठोर उक्ति बता रही है। तो इस प्रकार की कठोर उक्ति द्रौपदी इसलिए बोल रही है कि इसके द्वारा पति के का हित करना है। हित का जहाँ उपदेश किया जाता है वहाँ थोड़ा कठोर भी कहा जाता है। और शास्त्र की बात कहा कि जो क्षत्रिय ब्राह्मणों को सताते हैं तो ब्राह्मणों का क्रोध क्षत्रियों के वंश तक को समाप्त कर देता है, ऐसा पहले सुना गया है। यदि किसी ब्राह्मण का बहुत अपकार कर दिया गया, उसे दुख में डाल दिया गया, खास करके उसका धन छीन लिया गया और दुखी हो गया, तो उसे सदाचारी शुद्ध ब्राह्मण के शाप से क्षत्रिय के वंश ही समाप्त हो जाता, आगे वंश नहीं होता। इसको द्रौपदी जी कह रही, यदि कोई शुद्ध ब्राह्मण हो साप दे दे तो साप लग जाता। वो आजकल तो साप लगना कठिन है क्योंकि सब झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ बोलने वाले का वचन काम करता नहीं साप काम करता नहीं। लेकिन वास्तव में दो तरह के लोगों का साप या वरदान बहुत प्रसिद्ध है शास्त्रों में, एक तो शुद्ध ब्राह्मण और दूसरा पतिव्रता स्त्री, दो के साप और वरदान की बात बहुत कही गई है शास्त्रों में। क्षण भर में पता चल जाता था, यदि कोई ब्राह्मण किसी को साप दे दे तुम मर जाओ तो उसी समय मर जाते थे, तुम ये हो जाओ ये हो जाओ ये हो जाओ, तत्काल हो जाते थे। किसी देवता को साप दे दिया गया वृक्ष हो जाओ, तुरंत हो जाते, जैसे नारद जी ने नलकुबर और मणिग्रह को साप दिया वृक्ष हो जाओ, वो वृक्ष हो गए। महाभारत में हम लोग पढ़ते हैं कथा है नल और दमयंती की, राज्य गंवा चुके थे नल महाराज जुआ में, तो अपनी पत्नी के साथ वे वन में रहते थे बहुत निर्धन दशा में, वस्त्र भी पहनने के लिए ठीक से नहीं था। तो एक दिन नल महाराज दमयंती को छोड़ करके सोई अवस्था में और चले गए इधर उधर, तो बेचारी सवेरे जगी और बहुत विलाप करने लगी, रोने लगी, खोज रही थी पति को, नहीं मिले। दमयंती बहुत सुंदरी स्त्री थी, उसको देख करके एक व्याध, एक हंटर का चित बदल गया, वो कामुक हो गया, वो सोचा कि मैं इसको अपने चंगुल में फंसाऊं, तो बहुत तरह की बात करने लगा। लेकिन दमयंती प्रथम श्रेणी की पतिव्रता स्त्री थी, वो स्वप्न में भी किसी दूसरे पुरुष के विषय में कभी नहीं सोचती थी। जो व्याध बहेलिया जब उसके साथ प्रस्ताव रखा, तुम सुंदरी हो, मैं तुम्हें चाहता हूँ, ये कहता हूँ, तो बहुत बलवान था वो और बेचारी अकेले थे। लेकिन द्रौपदी ने कहा कि यदि मन कर्म और वचन से मैंने सदा नल महाराज के ही चरणों का चिंतन किया हो और स्वप्न में भी दूसरे किसी पुरुष को मैंने नहीं सोचा हो तो यह व्याध मर जाए। और इतना कहते ही उस व्याध के शरीर में आग लग गई और जल कर राख हो गया। ये महाभारत में कथा है। तो और इसी तरह के प्रभाव हम लोग ब्राह्मणों के वचन में पढ़ते हैं। तो द्रौपदी कह रही है कि हम लोगों का एक कर्तव्य नहीं है कि हम इनको सतावें। सुत गोस्वामी जी कहते हैं, धर्मम न्यायम सकरुणम निर्वेलिकम समम महत राजा धर्म सुतो राज्ञा प्रत्यनंद वचो द्विजा। हे ब्राह्मणों, नैमिषारण्य के सौनकादि ब्राह्मणों को संबोधित करके सुत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, द्रौपदी के वचन में 6 गुण थे। 6 गुण थे उसको ऐसे गिना रहे हैं। धर्म्यम, धर्म का अर्थ होता है जो हमारा कर्तव्य है वही करना चाहिए। तो जब द्रौपदी ने पहले यह कहा कि मुच्यता मुच्यता में सब ब्राह्मणों नेत्राम गुरु, इनको खोल दीजिए ब्राह्मण हैं गुरु हैं, तो ब्राह्मण और गुरु के साथ यह व्यवहार नहीं करना चाहिए, यह बात धर्म के अनुकूल थी। अर्जुन एक क्षत्रिय हैं और अश्वत्थामा ब्राह्मण है, ब्राह्मण में भी गुरु पुत्र है, तो गुरु पुत्र के साथ ब्राह्मण के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, यह धर्म की बात थी। द्रौपदी के वचनों में धर्म का उपदेश था। न्यायम और न्याय से युक्त वचन था। न्याय क्या था? वो बोली कि समस्त मंत्रों के साथ धनुर्विद्या आपने सीखा है, बाण चलाना युद्ध करना सीखा है द्रोणाचार्य से, इसलिए आपको भी चाहिए कि आप उपकार करें न कि अपकार। इसको न्याय कहा गया है शास्त्र में। जैसे मान लीजिए किसी ने किसी को 100 रुपया दिया है, यह है के अनुसार बोलना, 100 पाउंड दिया है किसी ने किसी को 100 पाउंड दिया और समय आने पर उसको यथावत 100 पाउंड लौटा दिया आपने, तो इसको न्याय कहा जाता। न्याय कहते, यदि हमको किसी ने कुछ सुख दिया है तो हमने उसको बदले में सुख दिया, इसको न्याय कहते हैं, और यदि हमने उसको कम दिया या नहीं दिया तो इसको अन्याय कहा जाता। ये न्याय है। जब द्रोणाचार्य ने इतना ज्ञान दिया, अस्त्र विद्या सिखाया, सब कुछ सिखाया, तो उनके पुत्र को बांधना यह अन्याय है, न्याय नहीं। तो द्रौपदी की बातों में न्याय था। सदा व्यक्ति को चाहिए कि वह न्याय के अनुसार चले, अन्याय ना करे किसी भी व्यवहार में। पति को भी चाहिए कि वो देखे कि पत्नी के साथ हमारा अन्याय नहीं होना चाहिए, और पत्नी को भी सोचना चाहिए हम पति के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए। इस तरह माता पिता राजा गुरु या समाज में कोई भी व्यक्ति है, न्याय पूर्वक चलना चाहिए। और सबसे बड़ा न्याय यदि देखना हो तो ईश्वर के प्रति देखना चाहिए, भगवान के प्रति। भगवान ने हम लोगों को जो दिया है उसकी कोई तुलना नहीं है, उतना कोई नहीं दे सकता है, माता पिता भी नहीं दे सकते। से बच्चा जब जन्म लेता है, आप सबका अनुभव है, देखा हुआ विषय है, अभी बच्चा माँ के उदर में रहता है तब तक माँ के स्तनों में दूध भरने लगता है, और बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ के स्तन को पीता है, छाती का दूध पीता है। स्तनों में दूध भर देना, ये किसकी व्यवस्था है? जरा विचार कीजिए, क्या उस बच्चे के पिता की व्यवस्था है? वो नहीं, और न तो माँ की व्यवस्था है, वो वास्तव में कृष्ण की व्यवस्था है। बच्चा जब जन्म लेगा तो उस समय वो रोटी नहीं खा सकता, भात नहीं खा सकता, करना चाहिए। तो भगवान ने जीभ दिया, लेकिन उस जीभ से लोग बहुत दुनिया भर की बात बोलते रहते हैं, कभी भगवान का नाम नहीं गाते, कभी जस नहीं गाते। तो ये भगवान ने बोलने की शक्ति दिया है, जीभ दिया है, सुनने की शक्ति, श्रवण शक्ति दिया, देखने की शक्ति दिया, कुछ काम करने की शक्ति दिया, तो भगवान के लिए काम करना चाहिए। इसको न्याय कहेंगे। जितनी शक्ति हम उतना ही कर सकते हैं। भगवान के प्रति तो न्याय का व्यवहार होना भी कठिन है। भगवान इतना दिए हैं, इतना दिए हैं कि हमसे तो उतना हो ही नहीं पाएगा, उतना कर नहीं पाएंगे, लेकिन जितनी शक्ति है उतना करना चाहिए, यही न्याय है। और भगवान थोड़े से किए गए क्रिया को बहुत मानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई माँ अपने बच्चे को भेजे कि जाओ वहाँ से पीढ़ा उठा लाओ। पीढ़ा समझते हैं काठ का एक पीठक होता है बैठने के लिए, भोजन के समय बैठते हैं कुछ, या कोई सामान। जैसे मान लीजिए माँ अगर भेजे बच्चे को वो सामान उठा लाओ, तो बच्चा जाता है, सामान उठाता है, उसे उठता नहीं है, और किसी तरह उठाया तो लेकर के चल नहीं पाता है। तो उस लेकिन बच्चे के ईमानदारी से प्रयास को देख करके माँ तत्काल दौड़ करके जाती है और उस सामान को उठा लेती है और बच्चे को भी उठा करके लाती है। सामान भी उठा लाएगी, बच्चे भावों को भगवान देखते हैं कि ये भजन करना चाहता है, थोड़ा कर रहा है, ज्यादा नहीं, अगर मान लीजिए 8 माला भी कर रहा है या 16 माला कर रहा है, 4 माला कर रहा है, तो भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि पूरा कराने लगते हैं। देखते हैं कि बच्चा प्रयास कर रहा है, इसकी जितनी शक्ति है उतना कर रहा है, तो भगवान उस माँ की तरह है कृपालु, जो उसके सारे अधूरे कार्य को पूरा कर देते हैं। यह न्याय है, मार्ग पर चला है, सही मार्ग पर चला है, धर्म का पालन किया है, उसको वही मार्ग अपनाना चाहिए। तो द्रौपदी जी कह रहे हैं कि आपने सदा गुरु की सेवा किया है और गुरु के परिवार की पूजा किया है, मान्यता दिया है, वंदना किया है, तो इस समय भी वही करना चाहिए, नया रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। और समम, समम का अर्थ है समता। उसने कहा कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी गुरु माता उस प्रकार रोवे जैसे मैं रो रही हूँ। ये समता है। दूसरे के दुख को हमेशा अपने दुख के समान समझने का प्रयास करना चाहिए। और छठा गुण था द्रौपदी के प्रवचन में कि निष्ठुर उक्ति द्वारा भी पति का हित करना चाहती है, कठोर वचन बोल करके भी चाहती है कि इसका हित हो। जैसे उसने कहा कि जो ब्राह्मणों को सताता है उसका वंश समाप्त हो जाता है,